रैना अब भी खड़ी थी, उसी मासूम चुप्पी के साथ। कमरे में वही सन्नाटा फैल गया था, मगर इस बार उस सन्नाटे में रैना की सांसें कुछ और गहरी थीं। शायद वो जानती थी लड़ाई आसान नहीं होगी, पर वो लड़ेगी, अपने सम्मान, अपने रिश्ते और अपने आत्मसम्मान के लिए। कमरे में एक बार फिर वो भारी सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर साया सा कुछ हिलता हुआ और खिड़की से आती चांदनी हर चीज को जैसे बेनकाब कर रही थी। रैना कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं लेकिन जुबान खामोश। उसकी उंगलियां अपनी चूड़ियों के साथ खेल रही थीं, घबराहट के इशारे में, जैसे वो कुछ न कुछ थामे रहना चाहती हो। अखिल, उसकी चाल में वही ठंडापन, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ तेज, कुछ ऐसा जो सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए बना हो। रैना ने नजरें उठाईं। कहाँ छुप रही हो? अखिल की आवाज बिल्कुल सीधी थी।
मैं बस
वो कुछ कहने ही वाली थी कि अखिल तेजी से उसकी ओर बढ़ा और कलाई पकड़ ली। तुम्हारी ये मासूम बातें अब बोर कर रही हैं मिसेज अखिल राजवंशी। रैना ने खुद को छुड़ाने की हल्की कोशिश की, लेकिन वो बहुत धीरे से थी, जैसे मन अब भी विरोध से डरता हो। छो, अखिल ने बिना कुछ कहे एक झटके में उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। तुम्हें क्या लगता है, ये सब दिखावा करोगी और मैं पिघल जाऊंगा? उसकी आंखें बेहद करीब थीं और उन आंखों में सिर्फ नफरत झलक रही थी। रैना की पीठ दीवार से टकराई और उसकी सांस हल्के से छूटी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। कुछ तो बोलो, अखिल फुंकारा। क्यों? उसने धीमे से पूछा। ताकि आप मेरी आवाज को भी चुप कर सकें? अखिल को जैसे उसका जवाब और भड़का गया। उसने उसकी ठुड्डी उठाई, उंगलियां जरा ज्यादा कसकर। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना नीचे गिर सकता हूं? फिर अचानक उसने अपने चेहरे को उसके बेहद करीब लाया। उसकी सांसें रैना के गाल से टकराई, गर्म और भारी। तुम्हारी ये नजरें झुकती क्यों नहीं? उसने लगभग गुर्राते हुए पूछा। रैना की पलकें कांपी, लेकिन उसने देखा सीधे अखिल की आंखों में। क्योंकि मैं डरती नहीं, सिर्फ सहती हूं, वो बोली। अखिल ने एक क्षण के लिए जैसे उसकी नजरों की गहराई में कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वही क्रूरता लौट आई। चलो, आज तुम्हारी ये सहनशीलता भी आजमा लेते हैं, वो बुदबुदाया। उसने धीरे से उसके चेहरे पर उंगली फिराई, नाक के पुल से लेकर गाज तक, फिर जबड़ा और रुक गया। प्यारी हो, वो बुदबुदाया। काश तुमसे नफरत करना इतना आसान ना होता। रैना की सांस रुकी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये अहंकार है या कोई भावनात्मक खेल। अखिल ने धीरे से उसके कान के पीछे उंगलियां चलाईं। एक पल को जैसे बदन में हल्की सिहरन दौड़ गई, लेकिन साथ ही डर भी। फिर अचानक एक झटके से उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। तुम मेरे पास क्यों आती हो? क्यों मेरी नजरों में एक बार फिर घुसने की कोशिश करती हो? वो लगभग चिल्ला पड़ा।
मैं आई नहीं, आप ही।
चुप, उसने उसकी बात बीच में ही काट दी और फिर उसका हाथ अपनी मुट्ठी में कुछ ज्यादा कस लिया। तुम जानती भी हो ये सब क्यों हो रहा है? रैना ने चुपचाप नजरें झुका ली। तुमने मेरा नाम पाने के लिए ये सब किया, मगर तुम्हारा होना ही मेरे लिए सजा है, अखिल ने धीमे से कहा, जैसे खुद से भी। फिर वो एकदम से शांत हो गया, रैना के बेहद करीब आया और उसके बालों को पीछे किया। उसका हाथ अब उसकी गर्दन के पास तक पहुंचा और उसने अपनी उंगलियों से हल्के से उसकी त्वचा को महसूस किया। इस शादी को तुमने अपनी सच्चाई बनाया, मैं इसे अपने बदले की जमीन बनाऊंगा, उसके स्वर में ठंडापन था। रैना कांप रही थी, डर से, अपमान से या उस पल की उलझन से, ये साफ नहीं था। आप जो चाहें कर सकते हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आत्मा आपसे डरती नहीं। अखिल ने एक क्षण के लिए उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें जो अब नम थीं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। फिर उसने रैना के बालों को अपनी उंगलियों में लपेटा और उसे और नजदीक खींचा। उनके बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। यही तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है, अखिल ने कहा, तुम्हारा हौसला। उसने उसके गाल को हल्के से छुआ, फिर अचानक उसे छोड़ा और दो कदम पीछे चला गया। जा सकती हो, उसने कहा ठंडी आवाज में। रैना वहीं खड़ी रही, सांसें तेज, सीना ऊपर नीचे होता हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने कहा, क्योंकि जो आपने चुना वो अब आपकी जिम्मेदारी है और मैं अपने हिस्से का रिश्ता निभाऊंगी। अखिल उसे देखता रहा, कुछ पल के लिए उसका चेहरा बिना किसी हाव भाव के था। फिर वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा एक ठंडी हवा के साथ बंद हुआ। रैना ने दीवार से टिककर आंखें मूंद ली। जिस रिश्ते में शब्द कम है वहां मौन सबसे बड़ा संवाद बनता है।